नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं नवीन सक्सेना। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज मालदा रेलवे स्टेशन पर हावड़ा, गुवाहाटी और कामाख्या के बीच चलने वाली भारत की पहली वंदे भारत स्लीपर रेलगाड़ी को रवाना करेंगे। हमारे संवाददाता ने बताया है कि प्रधानमंत्री मोदी गुवाहाटी हावड़ा वंदे भारत स्लीपर रेलगाड़ी को भी वर्चुअल रूप से रवाना करेंगे।
वंदे भारत चेयर कार की सफलता के बाद अब वंदे भारत स्लीपर एक्सप्रेस की शुरुआत होने से भारत में लंबी दूरी की ट्रेन यात्रा अब और तेज, सुरक्षित और आरामदायक हो जाएगी। हावड़ा गुवाहाटी मार्ग देश के सबसे महत्वपूर्ण रेल मार्गों में से एक है, जिस पर रोजाना लाखों यात्री सफर करते हैं। इस ट्रेन के शुरू होने से कालीघाट मंदिर और कामाख्या देवी मंदिर जैसे प्रमुख तीर्थ स्थलों की यात्रा अब और आसान, सुरक्षित और सुविधाजनक हो जाएगी। हावड़ा गुवाहाटी के बीच चलने वाली यह नई वंदे भारत स्लीपर ट्रेन मौजूदा समय में इस रूट पर चलने वाली सबसे तेज ट्रेन सरायघाट एक्सप्रेस की तुलना में काफी कम समय लेगी। यात्रा समय कम होने से क्षेत्रीय व्यापार, पर्यटन और रोजगार को बढ़ावा मिलेगा। साथ ही अलग अलग क्षेत्रों के बीच आर्थिक और सांस्कृतिक रिश्ते और मजबूत होंगे। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, गुवाहाटी।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पश्चिम बंगाल में 4 प्रमुख रेलवे परियोजनाओं की आधारशिला भी रखेंगे। श्री मोदी मालदा में 4 नई अमृत भारत एक्सप्रेस रेलगाड़ियों को भी वर्चुअल रूप से रवाना करेंगे। प्रधानमंत्री शाम को असम के गुवाहाटी में बोडो समुदाय की समृद्ध विरासत का उत्सव मनाने वाले एक ऐतिहासिक सांस्कृतिक कार्यक्रम बागुरुम्बा देवो 2026 में भी हिस्सा लेंगे। भारत और जापान महत्वपूर्ण खनिजों पर संयुक्त कार्य समूह गठित करने पर सहमत हुए हैं। विदेश मंत्रालय ने बताया है कि रक्षा सहयोग दोनों देशों के लिए महत्वपूर्ण है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने बताया कि जापान के विदेश मंत्री और भारत के विदेश मंत्री के बीच इस विषय पर चर्चा हुई। उन्होंने बताया कि विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा कि ये द्विपक्षीय साझेदारी वैश्विक अर्थव्यवस्था के जोखिम को कम करने में सक्षम है। जापान के विदेश मंत्री 3 दिवसीय भारत दौरे पर हैं। विदेश मंत्रालय ने कहा कि आर्थिक सुरक्षा पहल की भारत और जापान आर्थिक सुरक्षा के क्षेत्र में सार्वजनिक निजी सहयोग बढ़ाने के लिए निजी क्षेत्र संवाद का आयोजन करेंगे। एआई में सहयोग को गति देने के लिए दोनों पक्षों ने विदेश मंत्रालयों के नेतृत्व में एआई संवाद शुरू किया है। इसके अलावा दुर्लभ पृथ्वी तत्वों और महत्वपूर्ण खनिजों में सहयोग को आगे बढ़ाने के लिए दोनों पक्षों ने 2026 की शुरुआत में महत्वपूर्ण खनिजों पर संयुक्त कार्य समूह का गठन करने का निर्णय लिया है, जो एक नई पहल है। केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा है कि लक्षित नीति और वित्तीय सहायता के कारण भारत में उन्नत तकनीकों पर आधारित नवाचार तेजी से बढ़ रहे हैं। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री वैष्णव ने कहा कि आज भारत के 80% स्टार्टअप एआई आधारित हैं। उन्होंने कहा कि इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन के अंतर्गत डिजाइन लिंक्ड इंसेंटिव योजना के माध्यम से अब तक 23 स्टार्टअप को सहायता दी गई है। प्रवर्तन निदेशालय ने अल फलाह विश्वविद्यालय के कुलपति जवाद अहमद सिद्दीकी और अन्य के खिलाफ धनशोधन निवारण अधिनियम के अंतर्गत शिकायत दर्ज की है। निदेशालय ने हरियाणा में इस समूह से जुड़ी लगभग 140 करोड़ रुपए की संपत्ति को अस्थायी रूप से जब्त कर लिया है। पोलैंड के उप प्रधानमंत्री और विदेश मंत्री रादोस्लाव सिकोरस्की 3 दिन के भारत दौरे पर हैं। श्री सिकोरस्की कल जयपुर साहित्य महोत्सव में भाग लेंगे। उनका नई दिल्ली में विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर से मुलाकात का कार्यक्रम है। ईरान में सरकार की कार्रवाई के चलते प्रदर्शनों में मरने वालों की संख्या बढ़कर 3,090 हो गई है, लेकिन अब हालात सामान्य हो रहे हैं। इस बीच कट्टरपंथी धर्मगुरु आयतुल्ला अहमद खातमी ने गिरफ्तार प्रदर्शनकारियों को मौत की सजा देने की मांग की और अमरीका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को भी धमकी दी। वहीं ट्रंप ने सैकड़ों प्रदर्शनकारियों को फांसी रद्द करने पर ईरानी नेताओं को धन्यवाद दिया। 19 वर्ष से कम उम्र के एक दिवसीय क्रिकेट विश्व कप में आज भारत का मुकाबला बांग्लादेश से होगा। जिम्बाब्वे के बुलावियो में भारतीय समयानुसार ये मैच दोपहर 1 बजे से खेला जाएगा। बारिश से प्रभावित पहले मैच में भारत ने डकवर्थ लुईस नियम से अमरीका को 6 विकेट से हरा दिया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।